नमस्कार
नमस्कार
दोस्तों,
दोस्तों,
मोबाइल एनसी आपका दोस्त योगेश। आज का हमारा विषय है पक्ष विपक्ष में असमानता, उद्योगपतियों का मुनाफा, बढ़ती दुनिया की गरीबी। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 23 सालों में दुनिया के 5 बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति में दुगुने से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। जिस समय इन गरीबों अमीरों का दौलत में इजाफा हो रहा है, ठीक उसी समय 5 मिलियन लोग गरीब से अति गरीब हो गए थे। इससे ज्यादा मजे की बात यह है कि हाल ही में दावोस में हुई बैठक में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में, शीर्ष 5 उद्योगपतियों ने एक नई रणनीति पर चर्चा की और बैठक की है। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हैं। सर, मोबाइल लाइन पर स्वागत सर आपका।
जी नमस्कार योगेश भाई, नमस्कार।
सर, ये जो उद्योगपतियों का मुनाफा, वही बढ़ती दुनिया की गरीबी, इसको किस रूप में कैसे देखते हैं सर आप?
आज जो दुनिया है, दुनिया के अंदर जो सत्ताएं काम कर रही है, जो सरकारें काम कर रही है, जो व्यवस्था काम कर रही है, यह व्यवस्था कहने मात्र के लिए लोकतांत्रिक रह गई है योगेश भाई। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पे दुनिया भर के पैसे वालों ने कब्जा कर लिया है और इस माध्यम से उन्होंने कब्जा किया है कि आप देख लीजिए कि उन्होंने चुनाव को बहुत महंगा कर दिया है। दूसरी बात, जो पार्टियां सत्ता में आ रही उनको बहुत पैसे देते हैं और एक प्रकार से राजनीतिक जो दल है जिनको सिद्धांत और विचारों से मतलब नहीं रह गया, केवल चुनाव जीतना है, वह इनके पैसे का उपयोग जीतते हैं। इसमें पक्ष भी है, विपक्ष भी है। और ये लोग क्या करते हैं, उसके एवज में जो उद्योगपति है, जो पैसे वाले लोग हैं, नीतियों को प्रभावित करते हैं और संविधान को रखने का प्रयास करते हैं, काम करते हैं और नीतियां अपने पक्ष में बनाते हैं। तो सरकार आज इतनी लाचारे हो गई है दुनिया भर की कि इनके सामने झुक गई है और झुकने के कारण इनके पास मौका है और ये अपने हिसाब से अपने नीतियों का, अपने उत्पादन का, अपने भाव का जो करना है ये करा ले रहे हैं। क्योंकि आज जो सरकारें बन रही है उसके निर्माण में पूंजीपति है, जो सरकारें गिर रही है उसको गिराने में पूंजीपति है। किसको नेता बनाना है, किसको नहीं बनाना है, यह तय कारपोरेट लॉबी कर रही है। तो एक तरीके से पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है वो उनके हाथों में जा चुकी है और उन्होंने एक प्रकार के शासन करने का ढांचा खड़ा किया और ढांचा सरकार है, उसमें अमीरों की कोई बात नहीं हो पा रही। आप हिंदुस्तान के अंदर ही देख लीजिए तो हमारी देश की जो सरकार है वो कह रही है कि हम $5 ट्रिलियन के करीब जा रहे हैं और आने वाले दिन में हम विकसित हो जाएंगे, 2047 का लक्ष्य रखें। लेकिन 2047 तक आम लोगों का क्या होगा? 2047 तक क्या आप आम लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा रख लेंगे? और क्या एक व्यक्ति के जिंदगी को सुव्यवस्थित जीने के लिए केवल अनाज की जरूरत है? क्या उस व्यक्ति को दवा पानी व्यवस्था नहीं लगता है? तो सरकार एक प्रकार से मार्केट को हाई कर रही है और जीवन स्तर को भी बढ़ा दिया है और उसमें जो गरीब है उनको गरीब रखने का प्रयास किया है। सरकार ने गरीबी को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया है बल्कि उद्योगपतियों के उद्योगों को बढ़ाने का रास्ता तय कर लिया है। पहले क्या होता था कि जो अपना बजट बनता था वो बजट का मुंह गांव के तरफ होता था, किसान के तरफ होता था, मजदूर के तरफ होता था, विद्यार्थी के तरफ होता था। आज जो हम लोगों का बजट बन रहा है वह बजट उद्योगपति के तरफ है, वो बजट शहर के तरफ है, वो बजट पैसे वालों के तरफ है, वो बजट जो है माफियाओं के तरफ है। और यह कहा जा रहा है कि अब बजट मुनाफे का बजट है। तो मुनाफे का बजट है तो लोगों के चेहरे से खुशियां क्यों छीन रही है? लोगों का बेरोजगार, लोग बेरोजगार क्यों हो रहे हैं? शिक्षा का निजीकरण क्यों हो रहा है? चिकित्सा का निजीकरण क्यों हो रहा है? इसलिए इसलिए हो रहा है कि जो मुनाफे का बजट है वह हिंदुस्तान के 140 करोड़ के लिए नहीं है कि हिंदुस्तान के गिने चुने उद्योगपतियों के लिए है। और इसका कारण योगेश भाई कि सरकार ने बाजार को पूरी खुली छूट दे रखी है। तो आप जितना बाजार को खुली छूट देंगे, आप जितना उद्योगपतियों को अनियंत्रित करेंगे, अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जाएगी। इसको हल करने के लिए भी रास्ता है हिंदुस्तान के पास लेकिन सरकार उस पर चलना नहीं चाह रही है और वह रास्ता अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रास्ता है कि हर लोगों के हाथ में काम जाए और सबके चेहरे पे खुशी आए, परंतु सरकार उसका काम को करना नहीं चाह रही है। तो सरकार जानबूझकर के उद्योगपतियों के पाले में गेम डाल दी है और उसके कारण देश के अंदर, दुनिया के अंदर गरीबी और अमीरी की खाई चौड़ी होती जा रही है।
जी सर, जहां एक ओर सर हम समानता की भावनाओं को देखते हैं, वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस तरीके की रिपोर्ट को आप कैसा देखते हैं सर?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसका है
जी
और दुनिया के अंदर जो आज संगठन बन रहे हैं वो किसके हैं? यह तो उद्योगपतियों द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है कि हम एक संगठन बना लेते हैं, हम एक फोरम बना लेते हैं और उसके माध्यम से सरकारों पर दबाव बनाएंगे। तो दुनिया के अंदर जो संगठन बन रहे हैं वो संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, विश्व बैंक, ये जो तमाम संस्थाएं हैं, यह सरकार को अपने गिरफ्त में लेने की संस्था है, सरकार पे दबाव बनाने की संस्था है, यह आम जनता के कल्याण की भावना करने वाली संस्था नहीं है। यह कहते हैं कि मैं वेलफेयर स्टेट की रचना कर रहे हैं, कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं, परंतु इनके कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में कुछ लोगों का कल्याण है, सभी का कल्याण नहीं है। जबकि भारत के दर्शन में सभी के कल्याण की बात है, भारत के इतिहास में सबके कल्याण की बात कहा जाता है। यहाँ कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिना, सब लोगों के समानता की भावना, और अपने संविधान उसी आधार पर बना है योगेश भाई। परंतु सरकार पूंजीपतियों के चक्कर में पड़ करके संविधान को मिटा देना चाहती है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को मिला देना चाहती है, और उसको सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों से मतलब है। आज आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले आंकड़ा आया था कि देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनकी संपत्ति 2% के हिसाब से बढ़ रही है, 1.5% के हिसाब से बढ़ी, और कहीं कहीं घट भी रही है
जी।
और उद्योगपतियों की जो संपत्ति है 20% के हिसाब से बढ़ रही है। एक आंकड़ा आप देखे होंगे कोरोना में, जबकि पूरा कोरोना के समय पूरी दुनिया बंद थी, पूरा हिंदुस्तान बंद था, सरकारें अनाज पहुंचा रही थी, कहीं लोग भूखे सो रहे थे, तो उसमें हिंदुस्तान का एक उद्योगपति अंबानी 90 करोड़ रुपया प्रति मिनट कमा रहा था। बताओ कौन सा धंधा कर रहा था जब पूरा हिंदुस्तान बंद था, पहली बात। दूसरी बात कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना में बेरोजगारी बढ़ी और हमारे देश के निठल्ले सांसद और विधायक पेंशन ले रहे थे, पेमेंट ले रहे थे। तो यह कुल मिलाकर के एक पूंजीवाद और नेताओं का मिला जुला खेल है कि किस प्रकार से देश के अंदर असमानता को, गरीबी को फैलाया जाए और गरीबों को बांट करके रखा जाए कि वो संरक्षित होकर के इकट्ठा होकर के आंदोलन न करें। तो एक तरफ ये जनतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं और दूसरी तरफ लोगों के जिंदगी को कमजोर करना चाहते हैं।
सर, एक और भारत के परिप्रेक्ष्य में इस रिपोर्ट को देखें और 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दिया जा रहा है, तो क्या सर ऐसा लगता है कि जो जनता की जो भागीदारी है देश के विकास में, उसको कहां पाते हैं सर?
भाई देश का विकास तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि जनता भागीदारी कर रही है
जी।
अगर देश के विकास में जनता भागीदारी नहीं करती तो क्या आप इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं झेलते? दुनिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, आर्थिक संकट भारत में नहीं आ रहा है, उसके कारण सरकार और उद्योगपति नहीं होगा भाई
जी।
उसके कारण हिंदुस्तान के आम जनता, हिंदुस्तान के किसान मजदूर और हिंदुस्तान में काम करने वाले कामगार वर्ग है। हिंदुस्तान की 80 करोड़ जिनको मोदी जी अनाज दे रहे 5 किलो, वो लोग है कि हिंदुस्तान के विकास में अपना योगदान दे रहे। उसका कारण है कि ये लोग 80 करोड़ लोग अपनी आवश्यकता को मारकर जिंदा रखते हैं। ये लोग उपभोग में नहीं विश्वास करते, ये उपयोग में विश्वास करते हैं कि हमारे पास एक कपड़ा है, हम एक कपड़ा पहन करके रह लेंगे, दाल रोटी हम दाल रोटी खा करके रह लेंगे, लेकिन ये व्यक्ति अपनी आवश्यकता नहीं बढ़ाते। और मोदी जी को और सरकार को तो खुद सोचना चाहिए कि जहां देश के प्रधानमंत्री प्रतिदिन लखटकिया ड्रेस पहनते हैं, 3 प्रोग्राम में जाते हैं तो 3 ड्रेस बदलते हैं, उसी देश में अपने देश के जनता को 5 किलो अनाज पे जिंदा रखने के लिए मजबूर कर रहे, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और योगदान की बात करते हैं तो जब तक आम जनता योगदान नहीं देती, देश को कोई नेता और पूंजीपति नहीं चला पाता। परंतु जो वर्ग सबसे ज्यादा योगदान देने वाला है उसको आज नकारा जा रहा है, और जो वर्ग योगदान नहीं देने वाला है उस वर्ग को उठाया जा रहा है, क्योंकि यही पूंजीपति वर्ग सरकार बनाती है, यही पूंजीपति वर्ग सरकार को गिराती है। तो आज सरकार न संविधान पे ध्यान दे रही है, न आम जनता पे ध्यान दे रही है, वह तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए धर्म, मंदिर और मस्जिद पे ध्यान दे रही है, और दूसरा पूंजीपतियों के ऊपर ध्यान दे रही है, आम जनता को उससे कोई मतलब नहीं रह गया।
जी सर, जनता में और उद्योगपतियों की जो रेस लगी हुई है मुनाफे की, इसमें असमानता का दोष और समानता को कहां पाते सर?
इसमें रेस लगने का कोई सवाल ही नहीं होगा भाई
जी।
आप 100 क्विंटल के पहलवान को 10 किलो के पहलवान से लड़ाएंगे तो कौन जीतेगा? पहले ही तय है
जी।
रेस नहीं है, यह तो सरकार और उद्योगपति जानबूझकर के असमानता की रेखा को और बढ़ाना चाहते हैं। और इस असमानता के रेखा को मिटाने के लिए डॉक्टर लोहिया ने बहुत बड़ा सिद्धांत दिए थे। उन्होंने कहे थे कि दाम बांधो नीति लाओ, खर्च की सीमा तय करो और आय की सीमा तय करो। अगर आप पूंजीपतियों को, अगर आप किसान को लागत का 1.5 गुना देने की बात कर रहे हो तो पूंजीपतियों को भी लागत का 1.5 गुना दो। परंतु आज सरकार कामगार वर्ग को 1.5 गुना देती है और पूंजीपतियों को खुली छूट दे देती है कि आपको जितना लूटना है लूटो। तो अपने भाव, अपने अनाज का भाव वो तय करते हैं। अपने देश में एक राष्ट्रवादी संत है बाबा रामदेव, पतंजलि कंपनी चलाते हैं, देखे होंगे आप, उनका टीवी पर डेली एक सुबह नया प्रोडक्ट लेकर के आ जाते हैं। अपने आप को राष्ट्रवादी और स्वदेशी की बात करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। परंतु क्या बाबा रामदेव के उत्पादन का भाव बाजार तय करती है या कोई आम आदमी तय करता है? बाबा रामदेव के कंपनी में बनने वाले माल का भाव बाबा रामदेव तय करते हैं और उनके सीईओ बैठ करके तय करते हैं। और किसान के खेत में जब कपास निकलता है, गेहूं निकलता है, तो उसके भाव को तय करने वाले बिचौली और मंडी के लोग होते हैं। यह अंतर है, इस अंतर को मिटाना होगा, इस खाई को मिटाना होगा कि आप अगर किसानों को 1.5 गुना देते हो, पूंजीपतियों को भी 1.5 गुना दो, किसानों को भाव दो, किसानों को बाजार दो, आम जनता को बाजार दो, तब जाकर के असमानता को हल किया जा सकता है। तो यह जो रेस लगाई जा रही है गलत रेस है। इस रेस में तो आम जनता को रोलर के नीचे रख करके पीसने का काम किया जा रहा है, उसको उठाने का काम नहीं किया जा रहा है। और यह सरकारें और विपक्ष इस पे मिले जुले हैं और इनको मिला जुला करके आम जनता को खत्म करना है। इन्हें गरीबी की और असमानता की रेखा को छोटा नहीं करना है, बल्कि उन्हें बढ़ाना है और उसे बढ़ा करके उन्हें डरा करके वोट लेकर के सरकार बनाने का यह तंत्र चलता है।
तो ये थे डॉक्टर अनूप सर जी, उन्होंने मोबाइल वाणी पर पक्ष विपक्ष में असमानता, उद्योगपतियों का मुनाफा, बढ़ती दुनिया में गरीबी, इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। सर, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी योगेश भाई, नमस्कार।
जी सर, ऐसे कार्यक्रम सुनने के लिए सुनते रहे मोबाइल वाणी। नमस्कार।